ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 13वां अध्याय। राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक संख्या 20।
रहुगत्वम अपि यद्वनोस्य संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयाशितम् ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे राजा रहुगण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हें राजपद का तथा उस दंड का, जिसे अपराधियों को दंडित करते हो, परित्याग करने की सलाह देता हूं, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के सुहृद या मित्र बन सको। विषय भोग को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति से पहनाई हुई ज्ञान की तलवार को धारण करो। तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार कर दूसरी ओर जा सकोगे। तात्पर्य। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 3रे और 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना मोह के वृक्ष से की है, जिससे प्रत्येक प्राणी को छूटना है।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी।
इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में नहीं दिखता। इसके आदि अंत अथवा आधार को कोई नहीं जान सकता, इसलिए इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हीं आदि पुरुष श्री भगवान के शरणागत हुआ जाए, जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्णा। जड़ भरत महाराज रहुगण को अपना उपदेश जारी रख रहे हैं। सबसे पहले वो उनको बतला रहे हैं कि जिस जंगल का वर्णन मैंने किया और जिस जंगल के भीतर एक व्यापारी जाकर अनेक तरह की यातनाओं को सहन करता है, वो परिस्थिति तुम्हारी है। वैसे जब भी प्रचारक या महान कोई भक्त होते हैं, वो किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं, तो वो एक दृष्टांत या कहानी के माध्यम से अक्सर बताया करते हैं और अंत में बताते हैं कि वास्तव में तुम समझो कि ये कहानी में जो मुख्य पात्र था वो तुम हो। जैसे नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिष्यत को बताया था पुरंजन महाराज की कथा, और बताया था कि एक राज्य है जिसके 9 द्वार हैं, मतलब ये शरीर, पुरंजन तो आत्मा है, और फिर किस तरह से पुरंजन विषय भोग में लिप्त हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु आ जाती है, उसके पहले बुढ़ापा बीमारी आके उसे हैरान करती है, और कैसे उसे फिर जबरदस्ती इस राज्य से अर्थात इस शरीर से निकाला जाता है। और पुरंजन महाराज ये सारी कथा सुनते हैं, या प्राचीन भरिषत महाराज ये सारी कथा सुनते हैं पुरंजन के बारे में, और जब सारी कथा समाप्त हो जाती है फिर अंत में उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरा वर्णन है, ये तो मेरे बारे में है, केवल नाम बदल लिया, केवल पुरंजन कहा और थोड़ा दृष्टांत दिया, किला है, सांप है, ये है वो है, लेकिन अंत में ये तो मेरे जीवन की कहानी है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जड़ भरत ये सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं इस भौतिक जगत का और उसमें अटके हुए बद्ध जीवों का, और अटकने का कारण तो है भोग, भोग की प्रवृत्ति। तो इसके अंत में दृष्टांत समाप्त पूरा नहीं हुआ, अभी जारी भी रखेंगे जड़ भरत, लेकिन इस बार कृपा करके जल्दी से बता रहे हैं, सस्पेंस तोड़ रहे हैं, जल्दी से बोल रहे हैं कि वो व्यापारी जो है वो तुम हो हे राजन, क्योंकि तुम भी विषय भोग में लगे हुए हो, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो, इसलिए तुम क्या करना चाहिए तुम्हें, संन्यस्त दंड कृतभूत मैत्र, ये जो तुम्हारा राज दंड है, राजपद है, जिसके आधार पर तुम दुष्ट लोगों को दंड देते हो, जो कि तुम्हारा कर्तव्य है, इस राजपद को, इस राज दंड को तुम त्याग दो, क्योंकि आखिर राजा जितना भी धर्म के ओर से कुछ कार्य करे उसे लगता है कि मैं राजा हूं, जो कि एक भ्रम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस राजपद को त्यागो, कृत भूत मैत्र, कृत करो, क्या करो, भूत मैत्र, सारे भूत मतलब प्राणियों से, मैत्र मतलब उनसे मित्रता करो, समान दृष्टि से सारे भूतों को देखो। जब तुम राजा हो तो तुम्हें शत्रु मित्र में भेदभाव करना पड़ता है, कौन राज्य के खिलाफ काम कर रहा है, कौन सा दूसरा राजा है, हमारा शत्रु है या मित्र है, या ये जो है ये गुनहगार है ये नहीं है, तो इस तरह का भेदभाव करना पड़ता है। लेकिन जब तुम वास्तव में इस राजपद को त्याग कर दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओगे, तब तुम समान दृष्टि से सबको देखोगे, ज्ञान युक्त दृष्टि से देखना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी शुनि चैवश्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, उस समय तुम सबको समान दृष्टि से देख पाओगे। ये भक्त का गुण होता है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त को कैसे होना चाहिए, जो उनके लिए बहुत प्रिय है उनका वर्णन इस श्लोक से करते हैं। अद्वेष्टा, उसके हृदय में द्वेष नहीं होता है, सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, सारे प्राणियों के प्रति मित्रता रखता है, मैत्र और करुणा, करुणा की भावना रखता है सबके प्रति। करुणा कौन रख सकता है, केवल जो शुद्ध भक्त है, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है, जो सब प्राणियों का मित्र है वही करुणा रख सकता है। शुद्ध भक्त जो होते हैं प्रचार केवल संपूर्ण करुणा से प्रेरित होकर करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं होते प्रचार भी करते हैं तो उनकी करुणा की भावना इतनी विकसित नहीं होती है, क्योंकि अभी तक वो दृष्टि इतनी विशाल नहीं हुई है, अभी तक भेदभाव व्यक्ति करता है, प्रचारक भी देखता है कि ये व्यक्ति मेरे अधीन है, मेरी बात सुनता है तो इसके ऊपर ज्यादा कृपा दूंगा, वो व्यक्ति मेरी बात सुनता नहीं है तो उसके ऊपर कम कृपा दूंगा, मतलब ये हमारी दृष्टि अभी तक पूर्ण हुई नहीं है, जब संपूर्ण हमारी दृष्टि हो जाती है तब हम भेदभाव नहीं करते। इसलिए महाभागवत प्रचार नहीं कर सकता है, क्यों? प्रचार किसको करेगा? वो सबको तो अपने से बढ़कर समझता है, सबको समान देखता है, वो सब में कृष्ण देखता है, सबको कृष्ण में देखता है। यज्ञात्वान पुरन मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान यशेषाणि द्रक्षस्यत्मन्यथो मई। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कहते हैं कि तुम्हें गुरु स्वीकार करना चाहिए फिर तुम्हें सत्य मालूम होगा। तो क्या सत्य है ये? वो यही है, ये न भूतान शेषाणि द्रक्षस आत्मनि अथो मई, कि सारे जीव सारे प्राणी मुझ में है। हे अर्जुन, वो मेरे अंश हैं और वो मेरे हैं, ये सत्य है। तो जब इस परम सत्य को व्यक्ति पूरी तरह से जान लेता है तो फिर उसकी दृष्टि विकसित हो जाती है, उदार हो जाती है। आजकल भी लोग कई तरह के करुणा के कार्य करते हैं, चाहे वो शरीर के ऊपर करुणा हो, आत्मा के ऊपर करुणा हो, लेकिन फिर भी दृष्टि सीमित रहती है। हमारे समाज के लोगों के लिए या केवल जो भक्तों के लिए नहीं, लेकिन जो वास्तव में सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांता साधव साधुभूषणः तितिक्षवः कारुणिकः, ये साधु के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, जो कि तितिक्षवान होते हैं, कारुणिकाः सबके प्रति करुणा की दृष्टि रखते हैं, अजात शत्रुवः किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, वो शांत है, उनकी इंद्रियां शांत है, साधव साधुभूषणः पूरी तरह से ईमानदार है, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ये है साधु के भूषण आभूषण। इस तरह से यहां पर जड़ भरत रघुगण से कह रहे हैं, जब तक आप राजा हो आप सुहृद सबके नहीं हो सकते, सबको समान दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि आपको भेदभाव करना ही पड़ेगा। इसलिए जब महाभागवत प्रचार करता है तो उसे मध्यम भागवत के स्तर में आकर प्रचार करना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। मध्यम भागवत के मध्यम अधिकारी के स्तर में भेदभाव करना पड़ता है कि ये नास्तिक है, ये द्वेषी व्यक्ति है, और ये भक्त है, ये भगवान है, ये हमारे प्रेम के पात्र हैं, ये हमारे मित्रता के पात्र हैं, इनकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, तो ऐसे हम भेदभाव करते हैं। तो प्रचारक को भेदभाव करना आवश्यक है, नहीं तो वो सही सिद्धांत को पेश कैसे करेगा। लेकिन वास्तव में जो महाभागवत हो जाता है फिर वो किसी में भेदभाव नहीं करता। तो ये पहला उपदेश जड़ भरत का है। दूसरी बात वो जो कह रहे हैं, असज्जितात्मा हरि सेवया शितम ज्ञानासिमादाय तरातिपारम। असज्जितात्मा, असत को जिसने जीत लिया है, मतलब जो इस असत चीजों से आकृष्ट नहीं होता, जो जान लेता है कि ये संसार का सुख झूठा सुख है बल्कि केवल दुख का कारण है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बनो हे राजा जो कि इस संसार के सुख में रमण न करता हो। और आगे चल के क्या करे? हरि सेवया शितम ज्ञानासिम, ज्ञान असिम, असिम मतलब तलवार, तलवार के कई शब्द हैं संस्कृत में, जैसे असिना या असिम तलवार के लिए शब्द, तो ज्ञान असिना या ज्ञान असिम, ज्ञान का तलवार लेकर तुम अपने संशयों को अपने अज्ञान को नष्ट करो। लेकिन यहां पर किस तरह के ज्ञान के तलवार की बात कर रहे हैं? हरि सेवया शितम, शुष्क ज्ञान नहीं, मायावाद ज्ञान नहीं, निर्विशेष का ज्ञान नहीं, हरि सेवयाशितम, जिस ज्ञान जो ज्ञान भक्ति से सुशोभित है, अलंकृत है, ऐसा ज्ञान। नैष्कर्म्यम अपच्युत भाव वर्जितम, नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि ऐसे ज्ञान में कोई कीमत नहीं है जो भक्ति से रहित है। भक्ति रहित ज्ञान इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्ति युक्त ज्ञान अगर हो तो फिर व्यक्ति का ज्ञान उसे चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए भागवत में भी शुरुआत में जब सूत गोस्वामी आरंभ करते हैं अपना उपदेश तो क्या बताते हैं, तच्छ्रद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। वो कहते हैं कि हे मुनिवर, जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर भक्ति करता है जैसे कि वेदांत श्रुति में बताया गया है, तो पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, तो वो बहुत जल्दी से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ज्ञान वैराग्य से युक्त आदमी हो ही जाएगा। ज्ञान वैराग्य युक्तया, तो जो भक्त होता है उसके पास ज्ञान वैराग्य खुद ब खुद हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहितुकम्। जब व्यक्ति भक्ति करता है ज्ञान वैराग्य उसमें खुद ब खुद आ जाते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई केवल ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहा है और उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उसका ज्ञान निष्फल होगा। इसलिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, हरि सेवयाशितम ज्ञानासिम, कि तुम्हारे ऐसे ज्ञान से तुम कार्य करो जिसमें भक्ति हो। साधारण ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में और भक्ति युक्त ज्ञान में अंतर क्या है? साधारण आध्यात्मिक ज्ञान में व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूं, यह संसार का सुख भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। परंतु भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना हमारा जीवन का कर्तव्य है, ये बात को नहीं जानता। इसलिए यहां पर और गीता और अन्य शास्त्रों में भी इस बात की पुष्टि कई बार की गई है। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी हो, पापियों में से सबसे बड़ा पापी, पापकृत्तम सर्वेभ्य, ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान के नौके में, प्लवेन मतलब नौका, वो ज्ञान के नौके में अगर बैठा हो, वृजिनम संतरिष्यसी, वृजिनम मतलब ये भौतिक सागर, भौसागर, संतरिष्यसी मतलब वो तैर सकता है। यथे धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। वो कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से हमारे हृदय में ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित रूप से जलती है तो हमारे सारे कर्मों के फल को नष्ट करती है। तस्मात अज्ञान संभूतम रिस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। चौथे अध्याय में आखिर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनको, ज्ञानासीनात्मनः, वो ये ज्ञान का तलवार पकड़ो, हृत्स्थम आपने हृत अपने हृदय में जो स्थित अज्ञानस्थम जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला संशय है उसको नष्ट करो। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, और फिर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य करो। तो उसी तरह से हमें भी माया के प्रति युद्ध करना है, खड़े होकर, उत्साह होकर, हाथ में भक्ति युक्त ज्ञान का तलवार लेकर। माया के कई सिपाही आते हैं, आक्रमण करते हैं, टेलीविजन से, सिनेमा से बाहर जाते हुए इधर उधर कितने विषय भोग के वस्तु रहते हैं जगह जगह से। जब हम बाहर चलते हैं तीर चलते रहते हैं माया के, जबरदस्त तीर एक के बाद एक तेज गति से आते हैं। कभी कामदेव के तीर तो कभी इनके तीर, कभी कुबेर के तीर, कभी उनके तीर, जगह जगह के। आजकल विषय भोग के वस्तु इतने बढ़ गए हैं, मदन गोपाल प्रभु कितने सुंदर ढंग से बता रहे थे कैसे विषय, इंद्रिय विषय भी इतने बढ़ गए हैं। तो आदमी जब जाता है ये तीर से घायल हो जाता है, आदमी बाहर जाता है उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है, सारी आध्यात्मिक बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि इतने सारे तीर चल रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने शरीर में कवच पहनना चाहिए, आध्यात्मिक कवच, और उसको इन शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए वो तलवार होना चाहिए। कोई सामने आए मुकाबला करने, चलो मैदान में चलो, बोलने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी सावधान रहना चाहिए कि खामखा किसी से जाके युद्ध नहीं करना। मैं हाथ में तलवार है इसलिए किसी जिसके पास बंदूक है उसके पास में जाके लड़ाई करना, माया बहुत शक्तिशाली है, इसलिए केवल माया से टक्कर नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहां तक माया हमारे ऊपर आक्रमण करती है अपना संरक्षण तो करना चाहिए हमको। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो और इस अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। क्योंकि ये जो अज्ञान है इसने एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण किया है जिसको भौतिक जगत बोलते हैं। यहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को अपने तात्पर्य में कोट कर रहे हैं और बताते हैं कि किस तरह से इस भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष से निकलना बहुत मुश्किल है। 15वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि ये जो भौतिक जगत है एक ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के बराबर है जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जिसके मूल ऊपर हैं, और इसका मूल ये ब्रह्मलोक से शुरू होता है जो कि ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वहां से मूल शुरू होता है। और अश्वत्थ वृक्ष को आपने देखा होगा अनेक मूल होते हैं, एक ही नहीं, लेकिन मूल मूल जो है वो ब्रह्मलोक से आता है, और फिर इतने सारे अनेक जो ऊपर के लोक हैं जिसमें मनुष्य योनि सब निवास करते हैं, जैसे महर लोक, जन लोक, तपोलोक इत्यादि, वहां से भी अलग अलग और मूल निकल आते हैं और इसकी शाखाएं सारे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, नीचे की ओर आती हैं। और फिर 15वें अध्याय में विस्तार में भगवान ने बताया है इस भौतिक वृक्ष का वर्णन, आज पूरी तरह से चर्चा करने के लिए समय नहीं है, परंतु ये जो छोटे छोटे उपशाखाएं वगैरह होती हैं, ये सब इंद्रियों के विषय हैं, वो पन्ने जो होते हैं वो वेदों के मंत्र हैं, और इस तरह से इस भौतिक रूपी या इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी भौतिक जगत में हर बद्ध जीव अटका हुआ है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि इसमें से काट कर कैसे हमें निकलना है। वो इस वृक्ष के एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अनादि काल से चलते आया है और चलता रहेगा। तो इसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए, यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त्वा, शस्त्र हाथ में लेना चाहिए। कौन सा शस्त्र? असंग, निराशक्ति का, वैराग्य का, दृढ़ेन, दृढ़ता से पकड़ना चाहिए ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का तलवार, चित्वा उसको काटना चाहिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, फिर हम इसमें युक्त हो सकते हैं, इसमें हम सफल हो सकते हैं। ये जो ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है या ज्ञान की तुलना एक ऐसे अस्त्र से की गई है जो हमारे हृदय में कर्म के गांठ को काट सकती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तलवार या कोई छुरी वो हमारी मदद भी कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में नुकसान भी कर सकता है, या अगर हम लापरवाही करते हैं तो अपने आप को भी काट सकते हैं। हम सब्जी काट रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो क्या हो जाएगा, शायद हमारी उंगली को हम काट दें, खतरा है। तो उसी तरह से इस ज्ञान को भी हमें सही तरह से इस्तेमाल करना है। युक्त वैराग्य, सही ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे मार्गदर्शन के खिलाफ, इसलिए हमें सही परंपरा से ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। ऐसे परंपरा से सुरक्षित जो ज्ञान की तलवार को हम लेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से इस मुक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। ये ज्ञान वृजनम संतरिष्यसि हमको पार ले जा सकता है। ये एक नौका भी है, तलवार भी है और एक नौका भी है। नौके में बैठकर व्यक्ति पानी में चल सकता है। ये भौसागर इतना विशाल है, इसका इतना विस्तार है कि कोई भी व्यक्ति इसको तैरकर नहीं जा सकता अकेले। कितना भी बड़ा ओलंपिक्स का तैरने वाला भी क्यों ना हो, स्वर्ण पदक जीतने वाला, वो सागर को तैरकर नहीं जा सकता। वो गोवा से जाकर दुबई नहीं जा सकता तैर के, या तो हवाई जहाज में बैठना होगा या फिर नौके में बैठ के जाना होगा। लेकिन जो मछली पकड़ने जाने वाले छोटे छोटे नौके हैं उसमें बैठकर वो दुबई नहीं जा सकता, कोई उपयुक्त तो नौका चाहिए। तो उसके लिए ये मनुष्य देह भी एक नौका है। हृदय हम आद्यम सुलभम सुकल्पम प्लवेन, यहां भी प्लवेन शब्द का प्रयोग होता है कि मनुष्य देह एक नौका है जिसमें बैठकर आदमी आराम से जा सकता है। सुलभम सुदुर्लभम प्लवेन सुकल्पम, सुकल्पम मतलब बढ़िया उपयुक्त ये नौका है। और ये भौतिक देह आसानी से प्राप्त होता है लेकिन कठिनाई से भी। आसानी से क्यों? क्योंकि क्रम से जैसे जीवात्मा प्रगति करता है 84 लाख योनियों में, तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद उसे मनुष्य देह प्राप्त हो जाता है। सुदुर्लभम क्यों? क्योंकि समय के पहले प्राप्त नहीं होता। अगर कोई नीच योनि में है सोचेगा कि मुझे अभी मनुष्य देह चाहिए, नहीं, जब ठीक समय आएगा तभी मिल जाएगा। जैसे दूसरे कक्षा में कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई करते रहेगा, तीसरा चौथा करके खुद ब खुद 10वीं तक पहुंच जाएगा। लेकिन समय के पहले दूसरी कक्षा का व्यक्ति सोचेगा मुझे अभी 10वीं में जाना है, नहीं होगा, 7-8 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नृदेह हम, ये मनुष्य देह सुलभम भी है सुदुर्लभम भी है, और ये प्लवेन सुकल्पम बढ़िया एक नौका है। गुरु कर्णधारम, जो शिप के कैप्टन है वो है गुरु। इस तरह से इस नौके में बैठकर मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, ये नौके में बैठकर नौके को आगे चलना चाहिए, उसके लिए पवन चाहिए। पवन क्या है? वो शास्त्रों के आदेश है। शास्त्रों के आदेश के अनुसार हम गुरु परंपरा के आज्ञा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। अवंती ब्राह्मण ये वैसे बहुत अमीर एक व्यापारी था, लेकिन बड़ा कंजूस था। किसी को भी थोड़ा भी धन देने के लिए हिचकिचाता था, मना ही कर देता था। यहां तक अपने कुटुंब के निवासियों को भी वो पैसा नहीं देता था, उनको भी भूखा रखता था। तो कौन ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेगा? और इस तरह से सभी लोग उससे द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे, और वो पैसा इकट्ठा करता गया। लेकिन दैव से धीरे धीरे से उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। उसके खेतों में कोई नाना प्रकार के जंतु आए, सारे फसल को खा डाला। जहां उसके गोदाम में बहुत कुछ चीजें रखी हुई थी वहां आग लग गई, सब कुछ जल गया, राख हो गया। और जहां उसने सोना छुपा के रखा था वहां डाकू ने डाका डाल दिया। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक इतनी सारी विपत्तियां उसके जीवन में आ गई कि थोड़े ही समय में वो बिल्कुल गरीब हो गया। उसके पास कुछ भी धन नहीं था। अब वही परिवार के सदस्य जो पहले बाहर से मीठे मीठे शब्द कह रहे थे कुछ धन प्राप्त करने के लिए, अब उनको जब पता चला कि इसके पास कुछ धन रहा नहीं है तो उन्होंने इस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया। पहले भी तुम्हारे पास धन था तभी नहीं देते थे, मुश्किल से हम थोड़ा सा कुछ निकालते थे तुमसे, अब तुम्हारे पास धन ही नहीं है तो तुम्हारा क्या मतलब, चले जाओ। तो बेचारा बेघर हो गया, कोई मित्र नहीं, पहले से सबसे शत्रुता कर ली थी, कोई मित्र नहीं, घर नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करे। इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है मेरे दुख का, सोचने लगा क्या मेरा नसीब के कारण से ऐसे हुआ, मेरे पूर्व किए हुए कर्मों की वजह से ऐसे हुआ, क्या मेरे तारे वगैरह खराब थे, क्या काल के प्रभाव से ये सब गड़बड़ हुआ, या किसी दूसरे प्राणियों की वजह से गड़बड़ हुआ, क्या भगवान ने किया ऐसा सब मेरे साथ। मतलब सारे जो भी कारण हैं जिनको व्यक्ति दोष देते हैं अपने दुख में, उन सारों का लिस्ट बना दिया अवंती ब्राह्मण ने। जब भी व्यक्ति दुख में होता है ना, किसी न किसी को दोष देता है ना, किसी न कोई हमारे दुख के लिए जिम्मेदार है, मैं नहीं, दूसरे कोई लोग, ये हमारे ये आदमी ने किया, इस उस आदमी की वजह से, इस आदमी की वजह से ये घटना है, शायद वो तारे ही है, शायद नसीब ही हमारा खराब है, शायद समय ही खराब है, किसी न किसी चीज को, किसी न किसी व्यक्ति को, कभी कभी भगवान को भी दोष देते हैं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, हमने इतना सब दूसरों को भलाई किया है। लेकिन अवंती ब्राह्मण ने गहराई से सोचा, कोई पूर्व जन्म की सुकृति हुई होगी उनकी, कि यह बुद्धि भी आ गई कि ये छह कारण जो हैं ये मेरे दुख के कारण नहीं है, दुख का कारण है केवल एक, और वो है क्या है, कोई जानते हैं, मेरा मन, मेरा मन ही दुख का कारण है। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, एक ही घटना से एक व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, दूसरा आदमी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की मानसिक स्थिति अलग है। ये सुख दुख केवल एक मन का वहम है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस संसार का सुख और दुख केवल एक सपना है, मन से उत्पन्न होने वाला, मनोरथे नासति धावतो बही, मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन की रचना है ये। तो जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, सम दुख सुख क्षमी। लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया वो थोड़े से दुर्घटना से बहुत विचलित हो जाता है। तो अवंती ब्राह्मण ने कहा कि मेरा मन ही मुझे दुख दे रहा है, इसलिए मन को वश में करूंगा। तो कैसे करूंगा और कैसे इस दुख भरे सागर को मैं पार कर पाऊंगा? फिर उसने एक गीत गाया, भिक्षु गीत, बहुत सुंदर गीत है ये, इसमें ये ज्ञान से भरा गीत है। जैसे भगवत गीता, उद्धव गीता, शास्त्र में कई तरह के गीत हैं, ज्ञान से भरे हुए गीत। तो उसने भी ऐसे ही गीत गाया और अंत में उसने ये ठान लिया कि मैं इस भवसागर को पार करने वाला हूं। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा जो कि आज भी हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में संन्यास लेते टाइम भक्त बोलते हैं, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमे महर्षिभिः अहम् तरिष्यामि दुरंत पारम् तमो मुकुंदांघ्रि निषेवयैव। वो कहते हैं एताम स आस्थाय, अब मैं स्थित हो जाऊंगा किसमें, परात्मनिष्ठाम, पर आत्मा मतलब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, निष्ठाम उनकी भक्ति में, अब मैं स्थिर स्थिरता से स्थित हो जाऊंगा, दृढ़ता से भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग में। पूर्वतमेर महर्षिभिः अध्यासिताम्, जैसे कि पूर्व महर्षियों ने महाजनों ने जैसे पथ दिखलाया है वैसे मैं भक्ति करूंगा, अपने मनगढ़ंत ढंग से नहीं। अध्यासिताम् पूर्वतमेर महर्षिभिः, महाजनों ये न कथा स पंथा, महान ऋषियों ने जैसे पथ दिखलाया वैसे मैं भक्ति करूंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो भौसागर है इसको दुरंत दुरंत पारम कहते हैं, मतलब जिसको पार करना अति कठिन है, प्राय असंभव है, तो वो कहते हैं अहम तरिष्यामि, मैं तैर लूंगा, दृढ़ता से कहता है। क्यों, तमो मुकुंदांग्री निषेव यैव, मैं मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में मैं स्थिर रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये एक नौका है, अगर हमारा नौका भला छोटा हो लेकिन बड़े नौके से हमने जोड़ लिया तो बड़ा नौका छोटे नौके को खींच के ले जा सकता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये बड़े नौके के समान है, और हमारा हृदय हम ये छोटा नौका है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे होता है, जहाज जब बड़े जहाज छोटे जहाज को खींच के ले जाते हैं, नौसेना के लोग ऐसे कभी करते हैं, तो हमारी छोटे सा हृदय इसको भी पार करना बहुत कठिन है इससे, लेकिन बड़े नौके से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से हमने जोड़ लिया नाता, प्रेम का नाता, सेवा का नाता, तो फिर आसानी से हम पार हो पाएंगे। फिर हम भी उस अवंती ब्राह्मण की तरह निष्ठा पूर्वक भक्ति मार्ग में लग सकते हैं, और हम बोल सकते हैं बड़े उत्साह से अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, कि मैं भी इस भवसागर को पार करूंगा और मेरे मनुष्य जीवन को सफल करूंगा। मुकुंदांग्री निषेवयैव, और यही आदेश जड़ भरत का महाराज रहुगण का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? श्यामानंद पंडित, उनका पहला नाम दुखी कृष्णदास था, वो हृदय चैतन्य के शिष्य थे, हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य थे। गौरीदास पंडित अंबिका कालना में रहते थे बंगाल में, जहां की चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की श्री विग्रह थे, जहां की सुंदर लीला आप सबने सुनी होगी कि ऑल्टर से मूर्तियां नीचे छलांग मार के आगे संकीर्तन में भाग लेने के लिए, और फिर वापस उनको ले जाने के लिए गौरीदास पंडित बाहर पहरा रखने लगे गंडा से, सबको याद है ना वो कहानी अंबिका कलना की। हाँ, और एक बार ठीक संक्षेप में सुनाएंगे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां आए थे संकीर्तन के लिए अंबिका कालना में, जहां गौरीदास पंडित रहते थे, वो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने वहां पर गौर नेता की मूर्ति रखी थी मंदिर में, तो चैतन्य महाप्रभु आए संकीर्तन करके चले जाने वाले थे, गौरीदास पंडित ने उनसे निवेदन किया कि आप रहिए और थोड़े दिन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो मूर्ति रूप में हूं ही ना, मुझ में मूर्ति में कोई फर्क नहीं है, तो मेरी मूर्ति है तुम्हारे साथ में तो मैं हूं, तो आप तो जानते हैं कि हमेशा भक्त भगवान से ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं ना, साक्षी गोपाल की कहानी से भी हम जानते हैं। तो गौरीदास पंडित भी ज्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अगर आप में और मूर्ति में कोई फर्क नहीं है तो मूर्ति को जाने दीजिए, आप रह जाइए। तो फिर वो ऐसे उन्होंने भगवान को जबरदस्ती वहां रहने दिया। जब उनके शिष्य हृदय चैतन्य, पर उस समय उनका नाम हृदय चैतन्य नहीं था, उन्होंने संकीर्तन वह आरंभ किया था। उस समय गौरीदास पंडित ने देखा कि ऑल्टर से गौर नेता उतर के संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। वो पीछे भागे लाठी ले, अरे यहाँ श्रृंगार कौन, ये सेवा कौन स्वीकार करेगा, यहाँ मंदिर में कोई नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप भी संकीर्तन में जा रहे हो। तो वो पीछे गए और घबरा कर चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनके एक शिष्य गौरीदास पंडित के एक शिष्य के हृदय में घुस गए, अंदर वहां जाके बस गए। फिर उसके बाद उस भक्त का नाम हो गया हृदय चैतन्य दास, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए। तो ये हृदय चैतन्य दास वहीं पर रहते थे अंबिका कलना में, उनके शिष्य थे दुखी कृष्णदास। और दुखी कृष्णदास को उनके गुरुदेव ने जीव गोस्वामी के पास भेजा वृंदावन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जीव गोस्वामी उस समय वैष्णवों के प्रमुख थे, बड़े विद्वान थे, और कई गुरु अपने शिष्य उनके पास शिक्षा के लिए भेजते थे। जैसे हृदय चैतन्य ने श्यामानंद दुखी कृष्णदास को भेजा, वैसे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास को भेजा, और वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को भेजा। तो ये तीनों नरोत्तम दास, दुखी कृष्णदास और श्रीनिवास आचार्य तीनों बड़े मित्र हो गए, घनिष्ठ मित्र हो गए, और वहां पर रहकर जीव गोस्वामी के आदेश अनुसार सेवा करते थे, छोटी से छोटी सेवा करते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब दुखी कृष्णदास निधि वन में झाड़ू लगा रहे थे तो उनको एक अंगूठी मिल गई या एक आभूषण मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि ये किसका है, उन्होंने उठाया, और उस समय वहां एक बड़े तेजस्वी प्रकाशमान और सुंदर स्वर्ण रंग की तरुणी वहां आई। उसने कहा कि ये मुझे दे दो, ये हमारा है। तो तुम कौन हो? कोई बात नहीं, मैं कौन हूं इसका कोई चिंता नहीं करो, लेकिन ये मेरा हमारा है, दे दो। तो उन्होंने दे दिया, और फिर उनको पता चला, उस महिला ने बताया कि ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी का है, उस जगह में वो लीला करती थी, और उनको राधा रानी की कृपा से वो तिलक मिल गया, एक विशेष प्रकार का तिलक उनके कपाल के ऊपर। जब वो वापस गए तो जीव गोस्वामी ने पूछा, ये कौन सा तिलक है तुम्हारे ऊपर, ये तो हमारे गौड़ीय वैष्णव तिलक नहीं है। तो उन्होंने सारी बात बताई, और फिर जीव गोस्वामी के सपने में भी राधा रानी आकर इसकी पुष्टि की कि हाँ ये ऐसा हुआ। तो उस समय जीव गोस्वामी ने उनका नाम बदल दिया श्यामानंद, उनको नाम दिया श्यामानंद। हृदय चैतन्य को पता चला कि अरे मेरे शिष्य को दोबारा दीक्षा दे दिया मेरे होते हुए, तो उनको जीव गोस्वामी के प्रति थोड़ा बुरा ये हुआ, गैर समझ हो गया कि ये कैसे हो गया। फिर वो आए वृंदावन, बात इतनी गंभीर हो गई कि वो पूरे बंगाल से आए वृंदावन। फिर जीव गोस्वामी ने उनको समझाया, ऐसे ऐसे नहीं है, सत्य बात तो ऐसे है। और फिर श्यामानंद पंडित को ये सिद्ध कराना पड़ा। ये कहानी कभी बहुत लंबी है, कभी विस्तार में एक अलग से एक एकादशी के दिन कभी सुनाएंगे। और फिर श्यामानंद पंडित की परीक्षा हुई, और फिर स्वयं राधा रानी ने इसको सिद्ध करके दिखाया कि जो श्यामानंद बोल रहे हैं वो सही है, वो सत्य है। और उस दिन से हृदय चैतन्य ने भी आलिंगन किया और कहा कि तुम्हारे जैसे शिष्य मुझे मिला, ये बहुत अच्छा हुआ, ये मेरा जीवन धन्य हो गया। तो उस घटना के बाद उनका नाम दुखी कृष्णदास न रहकर श्यामानंद प्रभु हो गया। लंबी कहानी है, वो कहीं कभी और उसको सुनाएंगे। तो श्यामानंद प्रभु वो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ पहले पुस्तक वितरण के पार्टी में निकले थे, और उनकी पुस्तकें चोरी हो गई, और फिर आखिर में उनको तो मिल तो गई लेकिन काफी समय के बाद। फिर श्यामानंद प्रभु वहां से निकल पड़े जब नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में गए, श्रीनिवास आचार्य पुस्तकों को वापस ढूंढने के लिए रह गए और श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में चले गए, उड़ीसा में जोरदार प्रचार करने लगे और उसके बाद वापस वृंदावन नहीं गए कभी, उड़ीसा में ही रहे अंत तक। और उनके एक बहुत प्रमुख शिष्य हैं जो भी उड़ीसा में आज तक भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है, किसको पता है, रसिकानंद।